एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक कह सकते हैं बहुत ही बुनियादी विषय पर बात करने वाले हैं।
हाँ, ऐसा विषय जो हमारी दुनिया की, हमारे समाज की बनावट से जुड़ा है।
बिल्कुल, ये जो देश हैं, उनकी सीमाएं हैं और ये जो भावना है ना कि हम भारतीय हैं, हम जर्मन हैं, मतलब राष्ट्रवाद।
सही कहा, हम इन चीजों को अक्सर इतना स्वाभाविक मान लेते हैं जैसे ये हमेशा से थीं, सूरज चांद की तरह।
हाँ, जैसे ही कोई प्राकृतिक चीज हो। पर क्या ये वाकई में उतनी प्राकृतिक हैं या ये बनाई गई हैं?
यही सवाल है, और इसी सवाल की गहराई में उतरती है नील डेविडसन की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब नेशन स्टेट्स कॉन्शियसनेस एंड कॉम्पिटिशन ए मार्क्सिस्ट एनालिसिस।
तो आज हम इसी किताब के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये राष्ट्र राज्य यानी नेशन स्टेट क्या बला है और ये राष्ट्रवाद की भावना इतनी शक्तिशाली क्यों है।
और देखिए, ये विषय आज कितना ज्यादा प्रासंगिक है, आप रोज की खबरें उठाकर देख लीजिए।
हाँ बिल्कुल, देशों के बीच वो ट्रेड वॉर चलती रहती है,
सीमाओं पर तनाव,
नौकरियों को लेकर, संसाधनों को लेकर, राष्ट्रवाद का उभार, कौन हमारा है कौन बाहर का,
ये सारी बहसें, ये सब कहीं ना कहीं इसी राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद की कहानी से जुड़ी हुई हैं।
तो ये किताब हमें, मतलब सतही खबरों से परे जाकर,
हाँ, उस गहरी व्यवस्था को समझने में मदद करती है जिसने हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल दी है।
तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल।
सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात हो जाए, नील डेविडसन।
हाँ, नील डेविडसन 1957-2020 स्कॉटलैंड के थे, एक जाने माने मार्क्सवादी इतिहासकार और समाजशास्त्री।
ग्लासगो विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और अपने समय के, मतलब राष्ट्रवाद, राज्य, क्रांति जैसे विषयों पर काफी मौलिक विचारक माने जाते थे।
और उनकी खास बात यह थी, जैसा आपने कहा, कि वो सिर्फ किताबी विद्वान नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो स्कॉटलैंड की राजनीति से, खासकर वहां जो आजादी का आंदोलन चल रहा था,
स्वतंत्रता आंदोलन, उससे सक्रिय रूप से जुड़े थे।
उनकी एक किताब भी है, डिस्कवरिंग द स्कॉटिश रेवोल्यूशन,
जिसे प्रतिष्ठित डॉयचर मेमोरियल पुरस्कार भी मिला था।
हाँ, तो उनके लिखने में आपको वो गहरा ऐतिहासिक शोध भी मिलेगा, मार्क्सवादी सिद्धांत का फ्रेमवर्क भी, और साथ में जमीनी राजनीति की एक तीखी समझ भी।
ये तीनों का मिश्रण उनके काम को खास बनाता है,
और शायद इसीलिए वो स्थापित विचारों को चुनौती देने से हिचकते नहीं थे, चाहे वो लिबरल विचार हो या दूसरे मार्क्सवादियों के ही क्यों ना हो।
उनका मूल सवाल यही रहता था कि भाई ये राष्ट्र राज्य आया कहां से,
या आसमान से तो टपका नहीं,
किसके फायदे के लिए बना,
और सबसे अहम, इसका पूंजीवाद से क्या रिश्ता है। इसी ऐतिहासिक और भौतिकवादी नजरिए से वो पूरे मुद्दे को देखते हैं।
तो फिर किताब का सार क्या है, सबसे मुख्य तर्क?
देखिए, सबसे बड़ा और केंद्रीय तर्क ये है कि ये जो राष्ट्र राज्य है, मतलब एक तय इलाका, एक सरकार और एक राष्ट्रीय पहचान वाला देश, ये कोई शाश्वत या प्राकृतिक चीज नहीं है।
हाँ, ऐसा नहीं है कि इंसान हमेशा से ऐसे ही देशों में बटकर रहता आया है।
बिल्कुल, डेविडसन कहते हैं कि ये व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से देखें तो काफी नई है, और ये खास तौर पर पूंजीवाद के विकास के साथ उभरी है।
उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, जैसे कछुए के ऊपर उसका खोल होता है ना।
हाँ हाँ,
वैसे ही राष्ट्र राज्य पूंजीवादी व्यवस्था के लिए एक तरह का पॉलिटिकल शेल है, एक राजनीतिक कवच।
कवच? कैसा कवच?
एक ऐसा ढांचा जो पूंजी जमा करने में, कैपिटल एक्युमुलेशन में, और अलग अलग देशों के पूंजीपतियों के बीच जो कंपटीशन है, जो होड़ है,
उसे सुविधाजनक बनाता है।
अच्छा, ये उस आम सोच से बिल्कुल अलग है जो हम अक्सर सुनते हैं
कि राष्ट्र तो बहुत पुराने हैं। जी, हमारी संस्कृति तो हजारों साल पुरानी है।
हाँ, तो हमारा देश भी हमेशा से था। डेविडसन इस रोमांटिक ख्याल को तोड़ते हैं।
वो दिखाते हैं कि कैसे ये राष्ट्रवाद की विचारधारा गढ़ी गई, कैसे बनाई गई,
और कैसे धीरे धीरे ये राष्ट्र राज्य वाला मॉडल पूरी दुनिया पर छा गया।
तो किताब हमें पूरी कहानी बताती है, इंग्लैंड फ्रांस की क्रांतियों से शुरुआत।
हाँ, जिन्हें बुर्जुआ क्रांतियां कहते हैं, फिर जर्मनी, जापान जैसे देशों में ऊपर से क्रांति,
और फिर उपनिवेशवाद के खिलाफ जो आंदोलन हुए, उन्होंने भी आजादी के बाद इसी मॉडल को अपनाया।
हाँ, एक बहुत बड़ा फलक है, पूरी दुनिया का इतिहास इसमें सिमट आता है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। डेविडसन कुछ बुनियादी शब्दों को बहुत साफ करते हैं, राज्य, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, इनमें क्या फर्क बताते हैं वो।
हाँ, ये समझना जरूरी है। राज्य यानी स्टेट, इससे उनका मतलब है सरकार, पुलिस, फौज, अदालतें, नौकरशाही, मतलब शासन चलाने का पूरा तामझाम।
और मार्क्सवादी नजरिए से देखें तो ये अक्सर जो शासक वर्ग होता है उसके हितों को साधने और बनाए रखने का एक औजार होता है।
बिल्कुल। फिर आता है राष्ट्र, नेशन। ये बड़ा दिलचस्प है।
हाँ, ये क्या है?
डेविडसन यहाँ बेनेडिक्ट एंडरसन के उस मशहूर विचार का हवाला देते हैं, इमेजिन्ड कम्युनिटी,
काल्पनिक समुदाय।
काल्पनिक समुदाय
मतलब ये सच नहीं है?
नहीं नहीं, काल्पनिक इसलिए नहीं कि ये झूठा है, बल्कि इसलिए कि ये हमारी कल्पना में रचा गया है। सोचिए, एक राष्ट्र में लाखों करोड़ों लोग होते हैं।
हाँ, हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं,
कभी मिलेंगे भी नहीं,
लेकिन फिर भी अपने मन में, अपनी कल्पना में हम एक साझा अपनेपन का, एक साझे इतिहास और भविष्य का एहसास रखते हैं।
जैसे हम सब भारतीय महसूस करते हैं।
बिल्कुल।
या कहीं भी रहते हो।
बिल्कुल।
तो ये कोई आमने सामने वाला समुदाय नहीं है जैसे कोई गांव होता है। और डेविडसन जोर देते हैं कि ये एहसास कोई बहुत पुराना नैसर्गिक नहीं है,
बल्कि ये आधुनिक है और इसे बाकायदा गढ़ा गया है।
हाँ, शिक्षा से, मीडिया से, प्रतीकों से, झंडे, गान, इन सब से।
अच्छा, और तीसरा शब्द राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म।
ये वो विचारधारा है, वो राजनीतिक आंदोलन है जो कहता है कि हर राष्ट्र का अपना राज्य होना चाहिए।
मतलब नेशन और स्टेट एक हो जाने चाहिए, राज्य की सीमाएं राष्ट्र की सीमाओं से मिलनी चाहिए।
और लोगों की जो सबसे पहली वफादारी है, लॉयल्टी है, वो इसी राष्ट्र राज्य के प्रति होनी चाहिए।
यहीं पर डेविडसन का वो क्रांतिकारी तर्क आता है ना?
हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि हमारी आम समझ के उलट अक्सर ऐसा नहीं होता कि पहले से कोई राष्ट्र मौजूद हो और वो अपने लिए राज्य बनाए,
बल्कि ज्यादातर मामलों में क्या होता है?
ज्यादातर मामलों में राज्य पहले बनता है या मजबूत होता है, और फिर वो अपनी जरूरत के हिसाब से राष्ट्र का निर्माण करता है या उसे एक नई शक्ल देता है।
अरे, ये तो वाकई पूरी सोच को पलट देता है। हम तो ये सोचते हैं कि पहले हम लोग थे एक राष्ट्र, फिर हमने मिलकर देश बनाया।
हाँ, लेकिन डेविडसन कह रहे हैं कि कहानी अक्सर उल्टी होती है, राज्य राष्ट्र को गढ़ता है।
तो सवाल उठता है कि ये पहले राष्ट्र राज्य बने कैसे, शुरुआत कहाँ से हुई?
डेविडसन हमें ले जाते हैं इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांतियों की तरफ।
हाँ, जिन्हें बुर्जुआ क्रांतियां कहते हैं, क्योंकि इनमें जो नया उभरता हुआ पूंजीपति वर्ग था, व्यापारी, उद्योगपति,
उन्होंने पुरानी सामंती व्यवस्था को, मतलब जमींदार और राजे रजवाड़ों वाली व्यवस्था को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ली।
तो डेविडसन क्या कहते हैं, इन क्रांतियों के पीछे क्या था? क्या कोई गहरी राष्ट्रीय भावना थी पहले से?
डेविडसन कहते हैं नहीं, मुख्य कारण राष्ट्रीय भावना नहीं थी, बल्कि नए पूंजीवाद की ठोस जरूरतें थी।
जरूरतें? कैसी जरूरतें?
सोचिए, अगर आपको बड़ा व्यापार करना है, फैक्ट्री लगानी है, माल पूरे देश में बेचना है, तो आपको क्या चाहिए? चाहिए एक बड़ा खुला हुआ बाजार जहां कोई रोक टोक ना हो।
हाँ, पूरे देश में एक जैसे कानून हो, एक ही तरह के वजन और नापतोल हो, और एक मजबूत केंद्रीय सरकार हो जो कानून व्यवस्था बनाए रखे, व्यापार को सुरक्षा दे।
बिल्कुल। पुरानी सामंती व्यवस्था में तो ये सब नहीं था, हर इलाके के अपने नियम, अपनी चुंगी, अपने टैक्स, व्यापार के लिए बहुत दिक्कतें थी।
हाँ, ये तो बाधा थी।
तो इस नए पूंजीपति वर्ग को, इस बुर्जुआजी को, अपनी तरक्की के लिए एक सेंट्रलाइज्ड, एकीकृत राष्ट्र राज्य की जरूरत थी।
अच्छा, तो पहले जरूरत आई?
हाँ, जरूरत आर्थिक थी, और एक बार जब ये राज्य बन गया तब उसने धीरे धीरे
लोगों में वो भावना पैदा की।
हाँ, शिक्षा व्यवस्था के जरिए एक स्टैंडर्ड भाषा बनाकर, जैसे पेरिस वाली फ्रेंच या लंदन वाली अंग्रेजी,
राष्ट्रीय झंडा,
राष्ट्रगान, इतिहास की एक खास कहानी गढ़कर,
इन सब के जरिए लोगों में वो हम अंग्रेज हैं या हम फ्रांसीसी हैं वाली राष्ट्रीय चेतना पैदा की।
तो जरूरत पहले, पहचान बाद में।
ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, तो ये मॉडल इंग्लैंड फ्रांस में बन गया, पर ये बाकी दुनिया में कैसे फैला? जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश?
हाँ, वो तो इस रेस में पीछे थे।
हाँ,
यहाँ डेविडसन एक और मार्क्सवादी विचारक लियोन ट्रॉट्स्की की एक बड़ी दिलचस्प अवधारणा का इस्तेमाल करते हैं।
वो क्या है?
अनइवन एंड कंबाइंड डेवलपमेंट, असमान और संयुक्त विकास।
असमान और संयुक्त विकास, इसका क्या मतलब हुआ?
सीधा सा मतलब है कि दुनिया का विकास एक सीधी लाइन में, एक ही स्पीड से नहीं होता, कोई आगे कोई पीछे।
हाँ, ये तो है।
तो जब ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश ताकतवर पूंजीवादी राष्ट्र राज्य बन गए, तो जर्मनी, इटली, जापान जैसे देशों के शासक वर्गों को, एलीट्स को, खतरा महसूस हुआ।
उन्हें लगा कि अगर हम नहीं बदले तो या तो ये हमें खा जाएंगे या हम बहुत पीछे रह जाएंगे।
बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया? क्या वहां भी जनता ने क्रांति की जैसे फ्रांस में हुई थी?
डेविडसन कहते हैं ज्यादातर मामलों में नहीं, वहां हुई रेवोल्यूशन फ्रॉम अबव, ऊपर से क्रांति।
ऊपर से क्रांति मतलब?
मतलब ये कि वहाँ के जो पुराने शासक वर्ग थे, जैसे जर्मनी में बिस्मार्क और वो प्रशिया के बड़े जमींदार जंकर्स,
या जापान में मेजी सम्राट के सलाहकार,
उन्होंने खुद ही आगे बढ़कर अक्सर फौजी ताकत का इस्तेमाल करके और बड़े आक्रामक राष्ट्रवाद का नारा देकर
अपने देशों को जबरदस्ती एक किया और उन्हें आधुनिक राष्ट्र राज्यों में बदल दिया।
अच्छा, मतलब जनता की क्रांति नहीं बल्कि शासकों ने ही बदलाव किया।
हाँ, उन्होंने पश्चिम के मॉडल की नकल तो की, लेकिन उसे अपनी पुरानी सामाजिक संरचनाओं और जरूरतों के हिसाब से ढाला। ये नीचे से उठी क्रांति नहीं थी, ऊपर से थोपा गया बदलाव था।
और मकसद क्या था?
मकसद था वैश्विक ताकत की दौड़ में शामिल होना और अपनी सत्ता बचाए रखना, और राष्ट्रवाद यहाँ एक हथियार बन गया,
लोगों को एकजुट करने और दूसरे देशों से मुकाबला करने का हथियार, जैसे बिस्मार्क ने कहा था, खून और लोहे की नीति।
हाँ, उसी से जर्मनी को एक किया।
ये तो हुई यूरोप और जापान की बात, लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो उस समय गुलाम था, उपनिवेश था।
हाँ, भारत, वियतनाम, अफ्रीका के देश, वहाँ ये राष्ट्र राज्य का विचार कैसे पहुंचा? यहाँ डेविडसन एक बड़े दिलचस्प विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं।
विरोधाभास? वो क्या है?
वो ये है कि साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए, विदेशी गुलामी से आज़ादी पाने के लिए जो आंदोलन चले उपनिवेशों में,
हाँ, जैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम,
उन आंदोलनों ने अक्सर अपने दुश्मन यानी साम्राज्यवादी ताकतों के ही राजनीतिक मॉडल को,
यानी राष्ट्र राज्य को,
हाँ, उसी को अपनी आज़ादी के लक्ष्य के रूप में अपना लिया। गांधी जी हों, नेहरू जी हों, वियतनाम में हो ची मिन हो, अफ्रीका में क्वामे नक्रुमा हो,
इन सब नेताओं ने अपने अपने लोगों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का सपना देखा, उसके लिए संघर्ष किया,
और ये यकीनन साम्राज्यवाद के खिलाफ एक प्रगतिशील, एक पॉजिटिव कदम था। विदेशी शासन से मुक्ति पाना ही बड़ी बात थी।
लेकिन डेविडसन यहाँ भी हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखाते हैं।
हाँ, वो कहते हैं कि आज़ादी के बाद अक्सर क्या हुआ, इन नए राष्ट्र राज्यों में जो नया देसी शासक वर्ग उभरा,
उसने कई बार उन्हीं पुरानी औपनिवेशिक राज्य मशीनरियों का, पुलिस, फौज, ब्यूरोक्रेसी,
हाँ, उन्हीं का इस्तेमाल अपने ही देश के अंदरूनी विरोधियों, मजदूरों, किसानों या अल्पसंख्यक समूहों को दबाने के लिए किया।
अच्छा,
और साथ ही ये नए राष्ट्र राज्य भी उसी ग्लोबल पूंजीवादी व्यवस्था और देशों के बीच चलने वाली प्रतिस्पर्धा की होड़ का हिस्सा बन गए जिससे वो लड़े थे।
तो ये विडंबना है कि साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए राष्ट्र राज्य को अपनाया,
लेकिन वो ढांचा अपने साथ पूंजीवादी होड़ और अंदरूनी दमन की संभावनाएं भी लेकर आया।
अब आते हैं आज की दुनिया पर। कुछ साल पहले तक तो बड़ा शोर था, ग्लोबलाइजेशन आ गया है, दुनिया फ्लैट हो गई है।
हाँ, सीमाएं मिट रही हैं, राष्ट्र राज्य अब खत्म हो जाएगा, अब तो मल्टीनेशनल कंपनियां ही सब कुछ हैं।
तो लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ?
डेविडसन इस विचार को पूरी तरह खारिज करते हैं और उनका तर्क बहुत मजबूत है।
क्या तर्क है उनका?
वो कहते हैं कि वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य को कमजोर नहीं किया है, बल्कि वैश्विक पूंजीवाद के कामकाज के लिए उसे और भी ज्यादा जरूरी बना दिया है।
और ज्यादा जरूरी? वो कैसे?
देखिए, आज के दौर में पैसा, कैपिटल तो दुनिया भर में घूम सकता है आसानी से, लेकिन उसे कहीं ना कहीं टिकने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए
एक स्थिर राजनीतिक और कानूनी ढांचा चाहिए।
बिल्कुल, और ये ढांचा कौन देता है? राष्ट्र राज्य ही तो देता है।
हाँ, ये बात तो सही है। सोचिए, कोई बड़ी कंपनी कहीं फैक्ट्री लगाएगी तो क्या देखेगी?
उस देश के कानून कैसे हैं, टैक्स कितना है, मजदूरों के क्या नियम हैं, सरकार स्थिर है या नहीं, सड़कें बंदरगाहें हैं या नहीं,
ये सब तो राज्य ही तय करता है और लागू करता है।
तो आज राष्ट्र राज्य क्या कर रहे हैं? वो एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं।
किस बात पर?
इसी बात पर कि कौन ग्लोबल कैपिटल को, विदेशी पूंजी को ज्यादा से ज्यादा रियायतें देकर, छूट देकर अपने यहाँ खींच सकता है।
हाँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बातें होती हैं।
बिल्कुल,
वो अपनी घरेलू कंपनियों को दुनिया के बाजार में मदद करने के लिए व्यापार समझौते करते हैं, जरूरत पड़े तो दूसरों पर टैरिफ लगाते हैं,
अपने हम मजदूरों के आंदोलनों को कंट्रोल करते हैं ताकि प्रोडक्शन न रुके।
यानी राज्य अब कमजोर नहीं हुए हैं, वो ग्लोबल कैपिटल के लिए एक तरह से मैनेजमेंट यूनिट बन गए हैं। उनका काम बदला है, वो खत्म नहीं हुए।
तो चलिए, इतने सारे गहरे विचारों के बाद डेविडसन के कुछ मुख्य संदेशों को एक बार फिर से समेटते हैं। पहला, सबसे बुनियादी संदेश क्या निकल कर आता है?
मेरे ख्याल से सबसे बुनियादी संदेश यही है कि राष्ट्र राज्य कोई भगवान की बनाई चीज नहीं है, नहीं प्रकृति का नियम है।
ये आधुनिक हैं, ऐतिहासिक रूप से बने हैं, खास तौर पर पूंजीवाद के साथ।
हाँ, ये हमेशा से नहीं थे और ये जरूरी नहीं कि हमेशा रहेंगे। ये सोच ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
दूसरा
ये कि राष्ट्रवाद सिर्फ कोई हवा हवाई भावना या संस्कृति का मामला नहीं है।
इसकी जड़ें कहाँ हैं? समाज को पूंजीवादी तरीके से चलाने की और देशों के बीच जो आर्थिक राजनीतिक होड़ चलती है उसकी ठोस भौतिक जरूरतों में है।
इसीलिए ये इतना ताकतवर लगता है, इतना टिकाऊ लगता है, क्योंकि ये सिर्फ विचार नहीं पूरी व्यवस्था का हिस्सा है।
हाँ, जैसे हम भारत में देखते हैं, मेक इन इंडिया जैसी नीतियां हों या दुनिया में भारत की क्या जगह है, इस पर जो बहसें होती हैं,
ये सब इसी ग्लोबल कंपटीशन और राष्ट्रवाद के ताने बाने से जुड़ी हैं।
तीसरा, राष्ट्रवाद का वो दोहरा चरित्र।
हाँ, ये बड़ा जरूरी है, कभी ये अच्छा भी हो सकता है।
हाँ, जैसे आजादी की लड़ाई में विदेशी दमन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने में एक पॉजिटिव प्रगतिशील भूमिका निभा सकता है, जैसे भारत में हुआ।
लेकिन यही राष्ट्रवाद कई बार बहुत खतरनाक भी हो जाता है।
हाँ, आक्रामक, युद्ध चाहने वाला, नस्लवादी या अपने ही देश के अल्पसंख्यकों को दबाने वाला।
डेविडसन कहते हैं कि चाहे रूप कोई भी हो, अच्छा या बुरा, ये जुड़ा हमेशा पूंजीवादी तर्क से ही रहता है।
चौथा अहम विचार, जो बार बार सोचने पर मजबूर करता है, अक्सर राज्य ही राष्ट्र का निर्माण करता है।
हाँ, वो वाली बात, हमारे स्कूल की इतिहास की किताबें,
कौन से हीरो चुने जाते हैं, कौन सी कहानियां सुनाई जाती हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पर्व, झंडा,
ये सब तरीके हैं जिनसे राज्य हमारे अंदर एक साझा हम की भावना बनाता है और हमसे वफादारी चाहता है।
तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी जो राष्ट्रीय पहचान है उसका कितना हिस्सा स्वाभाविक है और कितना राज्य ने गढ़ा है।
और पांचवा, कि आज भी ग्लोबलाइजेशन के बावजूद
राष्ट्र राज्य खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ग्लोबल पूंजीवादी कंपटीशन का मेन मैदान, सेंट्रल एरिना बना हुआ है।
हाँ, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपने होम कंट्री की सरकार पर निर्भर रहती हैं राजनीतिक मदद के लिए, कूटनीतिक मदद के लिए, जरूरत पड़े तो सैन्य मदद के लिए भी।
इस किताब में ना कई ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो एकदम से हमारी आम सोच को हिला देते हैं।
हाँ, जैसे वही वाला विचार जिसे अगर हम उनके शब्दों में ना भी कहें, सार रूप में कहें तो,
कि पूंजीवाद के तहत अक्सर राज्य राष्ट्रों को गढ़ते हैं, न कि पहले से बने राष्ट्र अपने लिए राज्य बनाते हैं।
ये पूरी समझ को ये पलट देता
है।
या ये विचार कि राष्ट्रीय चेतना किसी हजारों साल पुराने मिथक या संस्कृति से उतनी नहीं आती
जितनी पूंजीवादी समाज की प्रतिस्पर्धा और राज्य की ठोस भौतिक जरूरतों से आती है।
ये राष्ट्रवाद के ऊपर जो एक रोमांटिक सा पर्दा पड़ा रहता है ना, उसे हटाकर उसके नीचे का ढांचा दिखा देता है।
और वो सूत्रीकरण भी कितना साफ है।
कौन सा?
कि राष्ट्र राज्य किसी राष्ट्र की स्वाभाविक राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि वो संस्था का ढांचा है जिसके जरिए पूंजीपति वर्ग अपना दबदबा कायम रखता है और दुनिया भर में दूसरों से मुकाबला करता है।
हाँ, ये राज्य को एक न्यूट्रल अंपायर की तरह नहीं देखता,
बल्कि खेल का एक एक्टिव खिलाड़ी या कहें कि मैदान का मालिक ही दिखाता है।
और अंत में वो बेनेडिक्ट एंडरसन वाली बात पर डेविडसन की टिप्पणी,
काल्पनिक समुदाय वाली।
हाँ,
कि ठीक है, राष्ट्र एक काल्पनिक समुदाय है और लोग इसे सच में महसूस करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसे इस तरह से क्यों और किसके द्वारा गढ़ा जाता है कि कुछ खास वर्गों या समूहों के हितों को पूरा करे।
ये हमें हमेशा अलर्ट करता है कि जब भी राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय एकता की बात हो तो पूछो
किसके फायदे के लिए,
कहीं ये समाज के अंदर की दरारों और असमानताओं को छुपाने का तरीका तो नहीं। तो ये सब इतने गहरे विचार हैं, इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या इस्तेमाल है? क्या ये सिर्फ एकेडमिक बातें हैं?
मुझे तो नहीं लगता। पहला तो यही कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखें या पढ़ें, देशों के बीच व्यापार युद्ध, सीमा विवाद,
तो हम सतही बयानों से आगे जा सकते हैं।
हम पूछ सकते हैं कि भाई इसके पीछे कौन सी आर्थिक होड़ चल रही है, किन कंपनियों या पूंजी समूहों के हित दांव पर लगे हैं।
दूसरा, ये हमें अपने देश की राजनीति को समझने का एक, कह सकते हैं, क्रिटिकल टूल देता है।
बिल्कुल।
जब नेता राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय गौरव की बातें करें, तो हम रुककर डेविडसन की बात याद कर सकते हैं
और पूछ सकते हैं कि इस राष्ट्रीय पर्दे के पीछे असल में किसका हित है, क्या इस एकता की कीमत को और चुका रहा है,
क्या ये हमें असल मुद्दों से जैसे बेरोजगारी, महंगाई, असमानता, पर्यावरण, इनसे भटकाने का तरीका है।
तीसरा, दुनिया भर में जो स्वतंत्रता या ऑटोनॉमी के आंदोलन चलते हैं,
स्कॉटलैंड, कैटलोनिया या कहीं और,
उनको समझने में मदद मिलती है। हम उनके दावों के पीछे के आर्थिक कारण, उनके क्लास स्ट्रक्चर, ग्लोबल सिस्टम से उनके रिश्ते, इन सब का विश्लेषण कर सकते हैं।
ये पता लगा सकते हैं कि ये वाकई आम लोगों की बेहतरी का आंदोलन है या किसी लोकल इलीट की अपनी एम्बिशन है।
और शायद सबसे निजी स्तर पर ये हमें अपनी खुद की पहचान पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है।
हाँ, कि भारतीय होने का मतलब क्या है, ये पहचान बनी कैसे, इसमें स्कूल की किताबों, प्रार्थनाओं, क्रिकेट मैच, फिल्मों,
और हाँ, राज्य की नीतियों का कितना बड़ा हाथ है।
ये समझ शायद हमें थोड़ा ज्यादा विनम्र बनाए और दूसरे राष्ट्रों के लोगों के प्रति ज्यादा खुला बनाए। ये समझने में मदद करे कि उनकी राष्ट्रीय पहचान भी शायद ऐसे ही बनी होगी।
मेरे लिए तो इस किताब से जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि जिन चीजों को हम स्थायी परमानेंट मान लेते हैं, जैसे देश, सीमाएं,
वो असल में स्थायी नहीं है।
हाँ, वो इंसानों की बनाई हुई ऐतिहासिक चीजें हैं जो एक खास आर्थिक व्यवस्था यानी पूंजीवाद से जुड़ी हैं, और अगर ये बनाई गई हैं
तो
इन्हें बदला ही जा सकता है, या कम से कम एक अलग तरह की दुनिया की कल्पना तो की ही जा सकती है।
और मेरे लिए वो सतह के नीचे देखने की कला, राजनीतिक नारों और घटनाओं के पीछे जो आर्थिक और सामाजिक ताकतें काम कर रही हैं, उन्हें पहचानना।
डेविडसन का विश्लेषण हमें सिर्फ चीजों को देखने की बजाय उन्हें समझने, उनका विश्लेषण करने का एक बहुत शक्तिशाली औजार देता है।
हाँ, ये हमें सवाल पूछने का और जो बातें मान ली गई हैं उन्हें चुनौती देने का हौसला देता है। डेविडसन अंत में किसी बेहतर राष्ट्रवाद का रास्ता नहीं सुझाते, बल्कि वो एक अलग ही दिशा की ओर इशारा करते हैं।
हाँ, वो अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात करते हैं। उनका मानना है कि अगर राष्ट्र राज्य पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा और युद्धों की जड़ हैं, तो असली समाधान राष्ट्रवाद से आगे जाने में है।
दुनिया भर के आम मेहनतकश लोगों के जो साझे फित हैं, उनके आधार पर एकजुट होने में।
ये एक बहुत बड़ा और शायद कुछ लोगों के लिए विवादास्पद विचार है, लेकिन सोचने लायक जरूर है।
और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ, कि अगर नील डेविडसन का विश्लेषण सही है कि राष्ट्र राज्य पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा से इतने गहरे जुड़े हैं, तो क्या राष्ट्र राज्य के बाद की कोई दुनिया, कोई व्यवस्था सोची जा सकती है?
और अगर हाँ, तो उस तक पहुंचने का रास्ता क्या हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।